السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا توسر علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس کی بیش بہا نعمتیں ہم سب کے پاس ہیں کہ صبح و شام جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دیں، لیکن کسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس کا احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک نعمت جس کا اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ، تو کیا پوری انسانیت کے نام ایک بات کہی، اور وہ کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک احسان کیا اللہ نے مومنوں پر. کیا؟ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہم نفس یعنی انہی کی جنس میں سے ایک رسول کو بھیجا، کیا کرتے ہیں وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، اور ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب، والحکمہ، اور حکمت سکھاتے ہیں. وان کانوا من قبلہ لفی ضلال مبین، حالانکہ اس سے پہلے وہ بڑی گمراہی میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد انسانیت کے لیے ایک رحمت تھی. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے جو فیصلہ فرمایا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی صورت میں ہوا، اور اس چیز پہ اتفاق ہے کہ آپ کی آمد ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور پیر کا دن تھا، یعنی منڈے کا دن تھا وہ. لیکن تاریخ کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ کون سی تاریخ تھی، اور کوئی بھی ہو، بات تو ہو گئی، فیصلہ تو ہو گیا. ایک دو دن آگے پیچھے سے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اصل بات کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت ان کا استقبال کیسے کیا گیا. بہت سارے لوگ اس چیز سے آگاہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ اپنے دادا کی کسٹڈی میں تھے، اور ایسے ہی لمحے میں ایک لونڈی صویبہ نام کی ایک پکار لگاتی ہے کہ عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اور اس پکار کو سننے والا ابو لہب، جو آپ کا چچا تھا، اس نے اس خوشی کا اظہار کیا کہ اسی لونڈی کو آزاد کر دیا کہ جا تو آج سے آزاد ہے، کیونکہ تو اتنی بڑی خبر لے کے آئی کہ میرا وہ بھائی جو آج دنیا میں نہیں، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. اور اس وقت ابو عبد المطلب بھی خوشی کے ساتھ سما نہیں رہے ہوں گے کہ اپنے نومولود پوتے کو اٹھا کے بیت اللہ میں لے جاتے ہیں اور کعبہ کا طواف کراتے ہیں، یا کم از کم وہاں کا دیدار. دنیا میں کئی لوگ 40-50 سال کے ہو چکے، لیکن ابھی تک اس گھر کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आते ही अल्लाह के घर को महसूस करते हैं, जो भी एक बच्चा जिस हद तक कर सकता है। अजीज साथियों, असल बात यह है कि हम आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि जूँ ही रबीउल अव्वल का महीना आता है, बल्कि आता भी नहीं, उससे पहले ही कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इस अहतमाम के साथ कि अल्लाह के नबी सल्लम की आमद का महीना है, तो कुछ ना कुछ हम ऐसा काम कर लें कि जिससे हम आपको अपने उम्मती होने का सबूत तो कम से कम दे सकें। और बाज़ तो मोहब्बत में इस हद तक बढ़ जाते हैं कि फिर ऐसे वक्त में वो कुछ ऐसे काम करने लगते हैं कि जिसकी शायद इजाज़त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ना दी हो, या कुछ इस तरीके से आपकी खुशी करने लगते हैं कि जैसी खुशी करना और कराना शायद आपके सहाबे कराम से भी साबित ना हो। वो बात तो अलग थी। मैं चाहूँगी कि कुछ बात हम इस बारे में देखें कि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन को ईद मिलादुन नबी कहते हैं। इस लफ्ज़ पे बात करेंगे पहले, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो आपके जहनों में हैं वो एक एक करके सामने आती जाएं। पहली बात है कि ईद क्या होती है। ईद किसी भी कौम के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा कोई त्यौहार हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो आपने लोगों को बहुत अच्छे कपड़े पहने देखा। आपने पूछा कि आज क्या बात है, तो लोगों ने बताया कि आज के दिन हम दौरे जाहिलियत से एक ईद मनाया करते थे। तो आपने फरमाया कि अब अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे अच्छे दिन दे दिए, और वो कौन से हैं? ईद उल फितर और ईद उल अधा के लिए की तौर पे। और आपने फरमाया कि मेरी उम्मत की यही दो ईदें हैं। मैं बात करूंगी उन लोगों की कि जो मिलादुन नबी के लफ्ज़ के साथ ईद का लफ्ज़ लगाते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं लफ्ज़ ईद की। तो चंद सवाल उठाऊंगी, आप भी उसका जवाब अपने जहनों में दीजिए, या अगर कोई ऐसी बात कहता है तो फिर आपके सामने भी ये चीज़ मौजूद हो। पहली बात क्या है कि ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। ईद उल फितर और ईद उल अधा में आप देखें तो सुबह का आगाज़ ही कैसे होता है कि मुसलमान खुले मैदानों में जमा हो जाते हैं और वहाँ पे सब शुक्राने के तौर पे नमाज अदा करते हैं। क्या इस दिन भी कोई नमाज पढ़ी जाती है? सोचिए जरा। फिर उससे आगे चलिए, उसके बाद खुतबा दिया जाता है कि जिसमें मुसलमानों को तज़कीर की जाती है। क्या इस दिन, जिसको लोग 12 रबीउल अव्वल के नाम पे मनाते हैं, क्या इस दिन भी कोई ऐसा इख्तमाम होता है? अगर है तो उसकी कोई दलील, कोई सनद आपने किया, आपके साथियों ने किया। फिर तीसरी बात देखिए कि उस दिन लोग ईद उल फितर के मौके पे रमज़ान के पूरे होने का शुक्राना अदा किया जाता है, और ईद उल अधा में हज का रुकन अदा करने की एक जो चीज़ है वो सामने आती है। क्या इस मौके पे भी कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा बात, कोई ऐसी चीज़ जो सामने आए? फिर अगला पॉइंट नोट कीजिए कि ईद के दिन रोज़ा रखना मना है। अल्लाह के नबी सल्लम ने मना फरमा दिया कि कोई ईद के दिन रोज़ा ना रखे। क्या इसी तरह इस दिन भी रोज़ा रखना मना है? ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर आप बताइए कि मैं और आप कहाँ इस चीज़ का हक रखते हैं कि इस मौके को ईद कह सकें। लफ्ज़ ईद, ये ईद नहीं। हाँ, ये कुछ और ईदों की मुमासलत ज़रूर हो सकती है। ईद किसी भी कौम का एक मजहबी त्यौहार होता है, जैसे कि मुसलमानों की ईदें हैं। इसी तरह से आप देखते हैं कि क्रिसमस के मौके पे नसारा क्रिश्चियंस ईद मनाते हैं, ईस्टर के मौके पे उनकी ईद होती है। इसी तरह एक ईद शिया हजरत 18 जिलहज को मनाते हैं, 18 जिलहज को, और इसको ईद गदीर खम कहते हैं, क्योंकि इनके ख्याल में इस मौके पे अल्लाह के नबी सल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को नामजद किया था कि मेरे बाद तुम मेरी जगह पे आओगे। हजरत अलविदा के मौके पे जब वापसी पे नबी सल्लम इस मुकाम पर पहुंचे, तो आपने एक बात हजरत अली के बारे में फरमाई थी, और वो क्या था कि मैं उसका दोस्त हूँ जिसका दोस्त अली है। यानी जो अली का दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है। शिया हजरत ने इस लफ्ज़ को इस तरह से बदल दिया कि इस दिन नबी सल्लम ने ये नॉमिनेट किया था कि जो अली रजी अल्लाह तआला अन्हो को मेरे बाद खलीफा मानेगा मैं उससे दोस्ती करूँगा, और इस खुद साख्ता रिवायत की बुनियाद पर ये ईद मनाई जाती है। इसी तरह 25 दिसंबर को देखें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में क्रिश्चियंस चरनी यानी एक जुलूस निकालते हैं जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाय पैदाइश की नकल, पहाड़ियाँ बनी हुई, बीच में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और बीवी मरियम और छोटे ईसा अलैहिस्सलाम को दिखाते हैं, कहीं जानवरों के बुत होते हैं, कुछ मतलब इस तरह पत्थर की छोटी छोटी चीज़ें बनी होती हैं और लोग उसके इर्द गिर्द नजराने पेश करते हैं। ये उनका अकीदा है कि यसू जो है वो खुदा के रूप में दुनिया में आया और सूली चढ़कर हमारी सारे गुनाहों को माफ़ करा के चला गया। उस दिन ईसाई लोग नाते पढ़ते हैं और वो समझते हैं कि ईसा अलैहि सलाम हम में मौजूद हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको अगर रेफरेंसेस में चाहिए तो मिल सकती हैं। जब इंसान वाकई महसूस करता है इन चीज़ों को तो उसको समझ में आ जाती है कि जो बात अल्लाह ताला ने कही वो सही थी या दूसरी बात सही है जो आज हम अपने लिए कहते हैं। तो हकीकत में दूसरी कौमों की देखा देखी जब हम बाकी काम करते हैं तो ये भी काम करने लग जाते हैं। फिर इसी तरह एक ईद मिस्री मनाते हैं जिसको ईद शम्मे नसीम कहते हैं, और उसके अंदर उन्होंने अपना एक देवता रखा होता है और उसके नजराने देने लगते हैं। एक ईद पारसी हजरात और मजूसी मनाते हैं, ये भी वो रबीउल अव्वल ही में मनाते हैं, कि जिस मौके पे वो अच्छे कपड़े पहनते हैं और उसको अपने लिए खुशी का दिन करार देते हैं। तो बात सारी यही है कि लोग अपनी मर्जी से दीन का जो मर्जी काम कर लें वो उनके हाँ तो कबूल हो सकता है, लेकिन याद रखिए कि उम्मते मुस्लिमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो दीन आया, जो आपने कह के दिखा दिया, जो करके दिखा दिया, जो करना बता दिया, तो लिहाजा ये बात तो समझ में आती है कि कोई अपनी मर्जी से लफ्ज़ ईद नहीं लगा सकता। ठीक है, आप नेकियां कीजिए और आपके लिए हर दिन नेकी का दिन हो सकता है, आप अपने आप को गुनाहों से रोकिए, आपका हर दिन इंशाअल्लाह ताला ईद का दिन हो सकता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से कोई कानून नहीं बना सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि हम जो भी करते हैं वो बस हमें इसकी इजाज़त है और हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ साबित हो जाती है कि ये दिन ईद का दिन नहीं। आगे चलते हैं लफ्ज़ मीलाद पे। मीलाद का लफ्ज़ जो है ये वलद से है, और वलद वलद मौलूद विलादत वल बच्चे को कहते हैं। तो अभी तक जो बात हमने देखी वो यही है कि 12 रबीउल अव्वल के नाते से इसको ईद का दिन कहना ये मुसलमानों का तर्ज़ अमल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इसको ईद करार दिया, ना आपके सहाबा ने किसी को इस चीज़ के लिए रखा, और हम ईद की बात नहीं कर सकते। अगर हम दूसरी चीज़ देखें जिसके अंदर लफ्ज़ मिलाद है, तो मिलाद का लफ्ज़ जो है ये वाव लाम दाल से है। मौलूद का लफ्ज़ आपने सुना होगा, वलद बच्चे को कहते हैं, वालिद बाप को कहते हैं, वालिदा माँ को कहते हैं, वालिदैन माँ और बाप दोनों के लिए लफ्ज़ आता है। तो इस सूरत में भी अगर हम देखते हैं कि क्या वाकई ये दिन मिलाद मनाते हैं, तो मिलाद से मुराद ये है, अरबी में मिलाद कहते हैं बर्थडे को, यानी वो दिन जो किसी की पैदाइश के दिन के नाते से मनाया जाए। तो अब हम देखते हैं कि क्या वाकई ये नबी सल्लम की सुन्नत है कि इस दिन ऐसे जश्न किए जाएं और ऐसा किया जाए। मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने तो हमें अपनी नेमतें दी, एक नबी दिया जो कुरान पाक की आयतों की तिलावत करे, पाक साफ करे, हमें हिकमत और दानाई की बातें सिखाए, लेकिन हम आज उसी नबी के तरीकों पर चलने की बजाय उस नबी के दुनिया में आने के दिन को अपनी मर्जी से मनाने की कोशिश करने लगे, और ये सोचने के लिए कुछ कोशिश भी नहीं करते कि क्या वाकई अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुछ हमें कहा, क्या हम अल्लाह के नबी सल्लम की पैदाइश का दिन मना सकते हैं, क्या वाकई ये दिन अल्लाह के नबी सल्लम ने मनाया। चलिए बिल फर्ज़ मुहाल 12 रबीउल अव्वल को लोग अल्लाह के नबी सल्लम की पैदाइश का दिन कहते हैं, हालांकि याद रखिए कि इसकी दलील नहीं मिलती, इसलिए कि जब कैलेंडर को देखा जाता है तो अल्लाह के नबी सल्लम की पैदाइश जिस साल हुई उस साल जो मंडे का दिन जिसको पीर का दिन कहेंगे वो 12 की बजाय 9 रबी अव्वल को हुआ था। और ये चीज़ सबके अंदर यानी मुत्तफिक है कि 9 रबी अव्वल नबी सल्लम की विलादत का दिन है, लेकिन आपकी वफ़ात जो थी वो 12 रबी अव्वल को हुई थी। आज मुसलमान जो इस दिन के नाते से जश्न कर मनाते और झंडियाँ लगाते और खुशी का इजहार करते, तो वो असल में शैतान आपकी वफ़ात की खुशी मनवाता है, नऊज़ु बिल्लाह। अब देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 60 से ऊपर साल हो गए जिसमें ये दिन आया। कोई एक रिवायत आपको मिलेगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मामला किया या आपने ये दिन मनाया? नहीं मिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, चले आप कहें कि नबूवत के बाद देख लेते हैं, 23 टाइम्स यानी 23 मरतबा आपकी नबूवत के अंदर ये दिन आया, आप लोगों ने किसने मनाया? नहीं मनाया। अबू बकर सिद्दीक के दौर में 2 मरतबा आया, क्या आपने मनाया? और अबू बकर वो चाहने वाले थे जो अल्लाह के नबी सल्लम के साथ सिर्फ लफ्जी मोहब्बत नहीं करते थे, उनकी मोहब्बत अपनी जान को देने तक के लिए भी तैयार थी, कि जिन्होंने आपके लिए मारें भी खाई, आपके लिए अपने घर भी छोड़े, उनके दिल में क्यों ख्याल ना आया कि 12 रबीउल अव्वल को, चले 12 नहीं तो 9 को मिल बैठें और कुछ अल्लाह के नबी सल्लम की याद मना लें। उसके बाद आप कह सकते हैं, हो सकता है अबू बकर बड़े मुनकसिरुल मिजाज थे, नहीं मनाया होगा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का दौर लीजिए, 10 मरतबा आपके दौर में ये दिन आया होगा ना। अगर इस दिन की कोई शरई हैसियत होती तो क्या वो ना मनाते? क्या आज हम अल्लाह के नबी सल्लम से ज्यादा मोहब्बत करने के दावेदार हैं और वो नहीं करते थे? ऐसा नहीं है। और उमर तो किसी से डरते भी नहीं थे। वला तखाफून लौमत लाइन, किसी मलामत करने वाले की मलामत से वो डरते नहीं थे। वो उनको क्यों ख्याल ना आया कि हम भी एक बार चलो नबी सल्लम का हक तो अदा कर दें। फिर उसके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला हो, 12 मरतबा 12 टाइम्स उनकी जिंदगी में ये दिन आया नबूवत के सालों में, नहीं मनाया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला हो की नबू आप देखिए कि खिलाफत के दौर में 5 मरतबा ये दिन आया, नहीं मनाया। उसके बाद अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला हो, 20 साल गुजर गए, एक दफ़ा नहीं उन्होंने मनाया। फिर इसके बाद देखिए आयमाए कराम, मुहद्दसीन, फोकहा, इनके अदवार में कितनी दफ़ा आया, लेकिन आम लोग दिनों की तरह गुजर गया। हाँ, ये शुरू कहाँ से हुआ कि जहाँ से लोगों ने असल दीन को कबूल करना छोड़ दिया, जब लोगों ने असल दीन को पसे पुश डाल दिया और ये सोचा कि चलो अब साल में कम से कम एक दिन तो कुछ ऐसा काम कर लो कि जिससे कुछ कमी पूरी हो जाए, और हम वो काम करने लग जाएं कि जिससे कल क़यामत के दिन कह सकें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम भी आपके नाम पे कुछ करते थे। अमीर मीनाई के दौर में ये पहली दफ़ा शुरू हुआ। तारीख के ऊपर जाने की कोई ज़्यादा इस वक्त गुंजाइश नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने देखना है कि नबियों की या ये जो इसी के नाते से कि मिलाद के बर्थडेज को मनाना, तो क्या वाकई ये इस्लाम के अंदर ये चीज़ मौजूद है और क्या कहता है इस्लाम इसके बारे में कि क्या वाकई ये जायज़ है? क्योंकि बहुत सारे लोग अमूमन बर्थडेज को बहुत ही एक आम सा मामला समझ के टाल देते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं चाहूँगी कि चंद मेन पॉइंट्स आपके सामने बर्थडेज के नाते से रखूँ, और ये मेरी बात नहीं होगी, आप ही की दुनिया की मारूफ जो रिसर्चेज हैं उसी के मुताबिक। तो बर्थडे सेलिब्रेशन कहाँ से शुरू हुई इसके बारे में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिका 1991 का एडिशन है, तो उसमें लिखते हैं कि सबसे पहले इजिप्शियंस और इसके अलावा रोमन्स, ग्रीक्स और पर्शिया के जो लोग थे ये अपने गॉड्स यानी इनके जो देवता थे उनकी बर्थडेज मनाते, किंग्स की बर्थडेज मनाई जाती और नोबल पर्सनैलिटीज की मनाई जाती। यानी जब ये रिवाज शुरू हुआ उस वक़्त आम लोगों की बर्थडे मनाने का कोई रुझान नहीं था। हाँ, लोग अपने खुदाओं और बड़े बड़े अहम लोगों की बर्थडेज मनाते थे। इसी तरह आप देखिए कि एक और बुक है कि जिसका ऑथर रॉफ उसका नाम है, और वो लिखता है कि यानी बर्थडेज को जो मनाने का जो तरीका है ये इजिप्ट में था, और द क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन यानी ये उसकी जो बुक के रेफरेंसेस हैं उसमें ये बात लिखी हुई है कि सबसे पहले यानी जो लोग बर्थडेज मनाते थे वो ऑनरेबल लोगों की मनाते थे, और उस वक़्त वो ये महसूस करते थे कि बर्थडे जो है वो किसी की ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होती है। हॉरोस्कोप के साथ, यानी जिसको आप सितारों से इल्म नजूम के जरिए किस्मत का हाल मालूम करते हैं, उससे ये चीज शुरू हुई थी कि किस तरीके से लोग पेगन प्रैक्टिसेस जो होती थी उसके नाते से बर्थडेज को सेलिब्रेट करते, फिर उससे अपनी एस्ट्रोलॉजी जो है उसको मिलाते और फिर देखते कि अब इस इंसान के साथ कैसा मामला होगा। यानी मैंने जितनी भी चीजों को देख सकी, मुझे तो उसमें यही समझ में आता है कि बर्थडेज जो है वो फिर ना कहीं से जाके शिर्क की तरफ बात ले जाती है। फिर इसी तरह एक रिवायत जो मिलती है वो क्या है कि बर्थडेज के लिए जो लोग, जहाँ से यानी आम लोगों में ये चीज कहाँ से आई कि पीपल ऑफ द एंशियंट जो लोग थे उनका ख्याल क्या था कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो स्पिरिट्स उसके पास आके उसको तंग करती है, तो वो उसके लिए एक साल पूरा ही तकरीबन, या खास तौर पे पहले साल का जो उसका पैदाइश का दिन था, तो उसके पास मोमबत्तियां जला के यानी कैंडल्स जला के रखते थे ताकि उसकी रोशनी में बच्चा जो है वो डरे नहीं। और सिर्फ ऐसा अमल जो था ये सिर्फ पहले साल तक होता था, इसके बाद वो लोग नहीं मनाते थे। अब आप देखिए कि वो तो करके चले गए, लेकिन आज लोग जो हैं वो 20-20, 25-25 साल, 50 साल के हो जाते हैं, बर्थडे मनाई जाती है। यानी मुझे तो एक दिन जिस बात ने हैरान कर दिया वो बात शायद आपको भी हैरान कर देगी कि किसी से मालूम हुआ कि जी कल परसों या कोई भी दिन होगा, जो ना मुझे याद है ना उसकी जरूरत है इस वक्त, कि मेरे दादा की बर्थडे है। तो बात भी दादा की बर्थडे है तो कितने ओल्ड हैं, तो पता क्या चला, यानी जो बात इंसान को वाकई हैरत में गुम कर देती है, कहने लगी कि नहीं, ही इज डाइड नाउ, वो फौत हो चुके हैं, लेकिन अगर वो जिंदा होते तो ये उनकी 100 और कितनी बर्थडे होती, तो वी आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज। अब आप देखिए कि इंसान कहाँ जाएगा, ऐसे काम कौन करता है, वक्त का जिया, जिनके पास दुनिया में कुछ और करने को नहीं वो खुद को पूछते हैं। हम अपनी बर्थडे मनाते हैं, हमने क्या किया, कभी गौर किया आपने, इंसान है क्या, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, अल्लाह की निगाह में उसका क्या मुकाम है, आप किस बात की खुशियां मना रहे हैं, आप एक बुत हैं जो अपने आप को पूज रहे हैं। चलें किसी बड़े की मनाई तो मना ली, छोटों की जिन्होंने कुछ किया ही नहीं आप उनके साथ क्या करते हैं, इस्लाम का ये मिजाज ही नहीं। क्या आप अपने सेंट्स और अपने लीडर्स और अपने प्रॉफिट्स के दिनों को मनाएं या आप अपने जैसे आम इंसानों की बात को मनाएं। फिर आप देखिए कि बात जहां तक नहीं रही, बर्थडे से फिर बात आगे बढ़ती है, तो फिर इंसान हर साल एक दिन को खास करके उस मौके की मुनासिबत से मरने वालों की बरसी मनाई जाना, ये भी असल में बर्थडे ही है। फिर इसी तरह आप देखिए उर्स, हमारे यहाँ एक बड़ा मारूफ लफ्ज है, मैं आज चाहूंगी कि थोड़ा सा आपको उसके ऊपर भी रोशनी डाल दूं कि कुछ लोग को कितना आसान लेते हैं। असल में उर्स क्या है, कभी किसी को कोई इसका मुशाहिदा हुआ हो, उरूसा किसको कहते हैं, दुल्हन को कहते हैं। उर्स वो लोग जो तसव्वुफ के ऊपर यानी अपना अकीदा रखते हैं, उनका क्या ख्याल है, यानी बुनियादी तौर पे ये उनके पीर साहब जो भी होते हैं या जो उनके बुजुर्ग होते हैं उनकी वफात का दिन होता है, लेकिन वो उसको उनकी वफात का दिन नहीं मानते, वो कहते हैं नऊज़ुबिल्ला, नऊज़ुबिल्ला जुबान पे बात आते हुए भी तकलीफ होती है मेरे, लेकिन वो कहते हैं कि अपनी सारी जिंदगी के मुजाहिदों और मेहनतों को करने के बाद अब आज इनका रब के साथ मिलाप हो गया, नऊज़ुबिल्ला, यानी वो अपने पीर साहब की शादी बनाते हैं उस दिन को नऊज़ुबिल्ला अल्लाह ताला के साथ, कि ये दुनिया से कूच कर गए, यहां से इन्होंने पर्दा डाल दिया और अल्लाह से जाके मिल गए, और इस खुशी में उर्स, उर्स शादी को भी कहते हैं, अरूसा दुल्हन को कहते हैं, ये मनाया जाता है। आप कहाँ तक जाएंगे, आप हम कहाँ तक आंखें बंद किए दूसरों के पीछे भागते फिरेंगे, जिसने जो कहा हम करने को तैयार है, जिसने जिधर लगाया चल पड़े, इससे भी ज्यादा कोई अहमक होगा दुनिया में, ना समझी की क्या इंतहा नहीं। और फिर अमूमन उस मामले को कहाँ तक आगे बढ़ाया जाता है, उस दिन को उन बुजुर्गों के नाम पे फिर खत्म दिलाने और खिलाने और पिलाने, आप जरा देखिए तो सही, आपके कद से लंबे कद के पोस्टर छपते हैं लोगों के उर्स के नाम पे, उनका आपने उर्स मनाया, नबी का आपने मिलाद मना लिया, फर्क क्या रह गया, एक पैदाइश का दिन क्या इतना अहम होता है। हाँ, पैदाइश का दिन मनाना है तो इस्लाम की पैदाइश का दिन मनाइए, जिस दिन इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक, ये आयतें उतरी, वो दिन जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला के घर में पैदा हुए, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, उस वक्त तो अबू लहब ने खुशी मनाई, उस वक्त तो उसी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश खुशी में चीजें बांट दी, लेकिन वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफा पहाड़ी पे खड़े होके कहता है लोगों, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, अल्लाह को एक मानो फला पा जाओगे, तो उस दिन वही चचा, वो मोहब्बत करने वाला चचा, उसकी मोहब्बतें नफरतों में बदल गईं और उसने आपके हाथ टूटने की बददुआ दी। क्यों? क्योंकि जो पैदाइश हुई थी नौ रबी अव्वल को वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की थी। हाँ, जिस दिन इकरा बिस्मि रब्बी कल्लज़ी आई तो उस दिन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदले। खुशी मनानी है तो जिंदा शरीयत की मनाइए जो आज भी है और क्यामत तक रहेगी, जिसे नबूवत मिली। अगर आपको अल्लाह के नबी सल्लम का जश्न मनाना है तो उस दिन का मनाइए जिस दिन ये शरीयत मिली कि जिसके जरिए से अल्लाह ने उम्मत को अंधेरों में निकाला। यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। उस किताब से ताल्लुक आज हमारा कितना है हम खुद जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम की कितनी हदीसें आती हैं सबको मालूम है। करा क्या, कितना किया, हमें मौत है, हमें मालूम है इसका, लेकिन क्या हम बच जाएंगे? फिर आप देखिए कि जब इंसान साल में एक दिन मनाता है तो क्या उससे मकसद पूरा हो जाता है? मसलन अगर आप में से कोई एक गाड़ी खरीदे और सिर्फ साल में एक ही दिन उसको निकाले और इस्तेमाल करे, जिस दिन उसको खरीदा था, खूब चमकाए, सजाए, संवारे, उस पर फूल मोती लगाए, लड़ियां लटकाए, क्यों? कि आज मेरी गाड़ी की सालगिरह। और जूं ही वो दिन गुजरा उसको दोबारा पोर्च में बंद कर दे, क्योंकि अब इसको अगले साल निकालेंगे, मकसद हल हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। आप एक घर बनवाएं, खूब अच्छा बन जाए, और जिस दिन उस घर की ओपनिंग करें सारी दुनिया को जमा कर लें जिसको आप बुला सकें, और खूब अच्छा हाउस वार्मिंग का प्रोग्राम करें और उसके बाद उसको लॉक कर दें, क्या आएंगे अगले साल तुझे खोलने? मकसद नहीं पूरा होता। गाड़ी ली है तो उसका मकसद हल पूरा कीजिए, अगर आपने घर लिया है तो उसका मकसद हल कीजिए, खाना ले आए और उसको देखते रहें कि आज लाए बस इसको अब खाना नहीं, नहीं असल मकसद पे नजर होनी चाहिए। अल्लाह ताला मुसलमान को एक बा मकसद जिंदगी देता है। अल्लाह के नबी सल्लम की जिंदगी में आने का मकसद क्या था, वो मकसद ढूंढने की जरूरत है। हु अल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह ताला तो ये मकसद बताता है नबी की आमद का, कि अल्लाह ताला वो है जिसने अपने नबी को दीन हक के साथ भेजा, हिदायत दे के भेजा, क्यों? ताकि दुनिया के तमाम दीनों के ऊपर ये दीन गालिब आ जाए। क्या आज ये दीन गालिब आ गया? क्या आज हमने अल्लाह के नबी के मिशन को घर घर पहुंचा दिया? क्या आज हमारी जिंदगी मिशनरी जिंदगियां बन गई? क्या हमने बल्लिगनी वलो आया, मेरी तरफ से पहुंचा दो अगर एक ही बार एक ही आयत क्यों ना हो, क्या इसका मकसद पूरा कर दिया? क्या ये काम हम कर चुके? क्या हमने अल्लाह के नबी सल्लम की हदीसों को आगे पहुंचा दिया? क्या हमने वो काम कर दिया जो अल्लाह के नबी सल्लम हज्जतुल वदा के मौके पे हमारे जिम्मे करके गए थे? और वो क्या था कि जो आज मौजूद है वो गैर हाजिर को पहुंचा दे। बाज दफा बात में सुनने वाले पहलों से ज्यादा बात को अमल करने वाले होते हैं, हमने तो नहीं किया, तो फिर आप बताइए क्या मुजरिमों की सफ में तो नहीं खड़े हो जाएंगे क्यामत के दिन? क्या सिर्फ हम अपने आप को इस मामले में करके सच्चा साबित कर लेंगे कि ये अल्लाह ताला मेरी वो उम्मत थी जो साल में एक दिन मेरे से मोहब्बत की बात करती थी, और फिर मोहब्बत की बात करने वालों को देखिए, कभी आप टेलीविजन पे देखा करेंगे जब इसके जुलूस निकलते हैं। मैंने कोशिश की इस लेक्चर की तैयारी में रात में मैं कुछ देखूं, यकीन करें मैंने भी एक ही चीज सर्च में डाली तो मेरे सामने एक इंसानों का रेला आ गया, और हाथों में सब्ज रंग के बड़े बड़े झंडे हैं, और एक भीड़ है इंसानों की जो सड़कों पे खड़ी है। क्या है ये? जश्न मिलादे नबी का जुलूस निकाल रहे हैं। चेहरे सुन्नत से दूर, हुलिये सुन्नत से दूर, बाज दफा देखा कि मस्जिदों में अजानें हो रही हैं और कोई नहीं है कि जो जाके वहां जमात से नमाज अदा कर ले। आप कहाँ तक अपने आप को धोखा दे सकते हैं कि अल्लाह के नबी हम आपके उम्मती हैं? कुछ लोग पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ पढ़ के गए होंगे, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लम हौज़े कौसर से पानी पिलाने लगेंगे तो फरिश्ते बताएंगे, अल्लाह के नबी जरा ठहर जाइए, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद आपके दीन का हुलिया बिगाड़ दिया था, इन्होंने अपनी मनमानियां की, इन्होंने बिदात रख दी। إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ، کوئی وعظ، کوئی درس اس جملے کے بغیر نہیں ہوتا تھا کہ لوگوں، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے. اس طرح کی بازاری محبتیں ہمارا دین نہیں سکھاتا. عاشقان رسول، کبھی آپ نے یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بولتے ہوئے سنا؟ عاشق، عشق، یہ اسلام کے لفظ نہیں ہے، یہ عرب لفظ نہیں ہے، معیوب لفظ ہے. آج لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اپنے نام کو اس طرح سے جوڑتے ہیں کہ ہم آپ کے عشق میں مبتلا ہیں. یہ کسی لوگ داستانوں میں تو یہ لفظ جچ سکتا ہے، لیکن دنیا کے بہترین انسان کے نام کے ساتھ یہ لفظ پسندیدہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ دیکھیے ایک اور طریقے سے، وہ لوگ جو عموماً اس دن کو مناتے ہیں آپ کی پیدائش کا دن سمجھ کے، وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی وفات بھی اسی دن ہوئی تھی، یعنی 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی. چلیے اس اصول کو سامنے رکھتے کے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی خوشی والے گھر میں غمی بھی ہو جائے تو کون سی چیز غالب ہوگی. شادی کا موقع ہے، خدا نخواستہ ساتھ ہی کسی کو چوٹ لگے، کسی کا انتقال ہو جائے، کیا لوگ خوشی منائیں گے یا غم کریں گے؟ ہمیشہ غم انسان کی خوشی پہ بھر جاتا ہے، اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. تو وہ لوگ جو اس وقت خوشی کا بات کرتے ہیں، کیا وہ پھر غم کب منائیں گے؟ بس اگر آپ دیکھیں نا کہ کسی کی ایک ہی دن وفات ہو اور اس پیدائش اور وہی دن اس کی وفات ہو جائے، تو جب اگلے سال وہ دن آئے گا تو لوگ اس کی پیدائش کی خوشیاں دیں گے، مبارک دیں گے، یا وفات کی بات کریں گے؟ بات واضح ہے، سمجھ آنی چاہیے انسان کو کہ وہ کیا کام کرے گا. وہ مشرکین تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی بات کو غیر مؤثر کرنے کے لیے تالیاں بجاتے اور آ کے سیٹیاں بجاتے تاکہ لوگوں کے دل میں اس کلام کا اثر نہ آئے. آج ہم نے بھی تالیاں پیٹ پیٹ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے گنگانے شروع کر دیے. آج بھی ہم وسلیں بجاتے ہوئے اور نعتیں پڑھتے ہوئے مرثیے پڑھنے والوں کی کاپی کرتے ہوئے ایسے ہی کام کرنے لگے. اور جب کسی سے کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ بڑے منکسر المزاج تھے. یعنی میرے ساتھ خود کسی کی بات ہوئی تو میں نے ایسے ذکر کیا، تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منائی، تو کہیں گے ارے ارے وہ تو بیچارے بڑے منکسر المزاج تھے، وہ نہیں اپنی مناتے تھے، مطلب وہ اپنے آپ کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے. تو میں نے کہا ابو بکر صدیق، ارے وہ بیچاروں کے تو اتنے فتنوں کا دور تھا، ان کے تو اتنے مشکل مرحلے تھے. یعنی آپ ذرا سوچئے لوگ کیسے لاجکس دیتے ہیں نا اپنے کاموں کی. ان کو خیال نہ آیا یہ وہ نیکی تھی جس سے پہلی امتیں، جو بہترین دور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرن قرنی، سب سے بہتر بہترین میرا دور ہے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا جو ان کے بعد تھے، اور اس کے بعد ان کے، ان کے بعد ان کے. ہر آنے والا دور جو ہے وہ اگلے سے خراب دور آ رہا ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں کہ جو میلاد النبی کے موقع پہ لوگ کرتے ہیں تو بالکل کاپی ہے یہ 25 دسمبر کو جو کرسچنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرتے ہیں. وہ حضرت عیسیٰ کے نام پہ سانگز گاتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نعتیں پڑھتے ہیں. وہ ان کی چرنی نکالتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری چرنیاں نکالتے ہیں. آج بھی پاکستان میں شہروں کے اندر آپ دیکھیے گلیوں کو روک کے زمین کے اوپر پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے. کہتے ہیں اس دن لائٹنگ ہونی چاہیے مسجدوں میں. میں پوچھتی ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجدیں دو ہی ہیں، اللہ کا گھر بیت اللہ اور بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبی. کیا وہاں یہ دو اس دن دو راتوں میں روشنائیاں ہوتی ہیں؟ اگر وہ مسجدیں خالی ہیں، ادھر روشنیاں نہیں ہیں، تو ہم اپنے گھروں میں اور اپنی مسجدوں میں لائٹیں لگا کے کیا ثابت کرتے ہیں؟ ہم تو اس نبی کی امت ہیں کہ جس کو دنیا سے جب جا رہے تھے تو جو چراغ چل رہا تھا اس کا تیل بھی کسی سے ادھار لیا ہوا تھا. ہم اس نبی کے امتی کہ جن کے گھر میں دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، حالانکہ آپ کے 8 سے 9 گھر بھی تھے ایک ایک وقت میں. ہم تو وہ اس نبی کی قوم کہ جن کے گھر میں چند مال تھوڑا سا رہ گیا کہ جو صدقے کا مال تھا، اور آپ کو نماز میں خیال آ گیا، آپ نے جلدی سے نماز پڑھی اور آپ فوراً گھر سے گئے اور اس مال کو صدقہ کیا، واپس پھر آئے. ہم اپنی مرضی کی زندگیاں گزارنے والے، اپنی پسند کے ساز و سامان لینے والے، अल्लाह की रज़ा और उसकी नाराज़गी से आए तो होते रहे कि अल्लाह के नबी सल्लम हमें माफ़ कर देंगे। क्या हम अल्लाह के नबी सल्लम की इत्तबा कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह ताला के नबी से आगे तो नहीं जा रहे? सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरते रहा करो, यकीनन अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। क्या हम आगे तो नहीं बढ़ रहे? सूरह नूर आयत 63 में अल्लाह ताला ने इंसानों को डराया, वल यहज़र अल्लज़ीन युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सुनो, जो लोग हुक्म रसूल की मुखालफत करते हैं उन्हें डरते रहना चाहिए कि इन पर कोई जबरदस्त आफत ना पड़ जाए या इन्हें दुख की मार ना पड़े। अल्लाह के नबी सल्लम की जिंदगी में जब आपका हुक्म आ गया, हम उनकी कोई बात हमारे सामने आ गई, फिर इख्तियार नहीं रहता। लोग कहते हैं च्वाइस है, कर लो ना कर लो। नहीं, किसी को नहीं है। वमा कान लि मुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा कद अल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। किसी मुसलमान मर्द और औरत को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के बाद किसी अमर का इख्तियार बाकी नहीं रहता। याद रखो, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा उसका क्या अंजाम होना चाहिए, आप खुद सोचिए। क्या मामला होगा कि जो ना माने वो सरी गुमराही में पड़ेगा? यानी आप उनके बेटे, मुंह बोले बेटे के साथ निकाह का मामला था ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, एक जरा सरासर निजी मामला था, उस पर अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल कर दी थी कि देखो, जब नबी कुछ कह दे तो इख्तियार मौजूद नहीं, तो क्या आज के उम्मतियों के लिए ये इख्तियारात मौजूद हैं? दीन कितना आता है, बात कितनी जानते हैं, उस नबी की सुन्नतें कितनी हैं जिंदगी में? यानी मैं चाहूंगी कि हम एक अपना एहतसाब करें, और ये जितनी तलख बातें हैं ये सिर्फ अपने एहतसाब के लिए कि क्या वाकई हमने अल्लाह के नबी सल्लम के उम्मती होने का हक अदा कर दिया? क्या आज हमारी जिंदगी के अंदर वही तरजीहात बन गई जो अल्लाह के नबी सल्लम की थी? क्या आपकी सुन्नतों के साथ हमें उतनी ही मोहब्बत है जितनी सहाबे कराम को थी? क्या हमने अपनी हिदायत के लिए अल्लाह के दीन को और उसके नबी की सुन्नतों को थामना इसका यकीन कर लिया? क्या हमने इसको मान लिया कि बचेंगे तो इसी में? अल्लाह के नबी सल्लम ने शायद आज के दौर के लिए ही कहा था कि तुम में से जो भी जिंदा रहेगा वो बहुत सारे इख्तलाफात देखेगा। तुम मेरी सुन्नत और खुल्फाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से थाम लो और अपने दांतों से इस पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लो। और देखो, दीन में नई बातें ईजाद करने से बचो, क्यों कि हर बिदअत गुमराही है। मेरा ख्याल है कि कोई इस चीज़ को ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ बिदअत नहीं। अल्लाह के नबी ने मना किया था इन चीज़ों से, और आपको पता है कि जो ऐसे कामों में मुलव्वस होता है उसके बाकी नेकियां भी कबूल नहीं होती। मन अहदथ फी अमरीना हाजा मा लैस मिन्हु फहुवा रद्दुन। इससे ही बुखारी की हदीस नंबर 2697 है। जिसने हमारे इस दीन में नई बात पैदा की जिसका इससे ताल्लुक नहीं तो वो मरदूत है, रद्द हो जाएगा। सुखकन सुखकन लियसहाबली गैयरम मिन बादी। हाँक दो इनको पीछे, इन्होंने मेरे बाद बहुत इजाफे कर लिए थे। अब्दुल्ला बिन मसूद रसी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इत्तबा और ताबेदारी करते रहो और नई नई बातें मत घड़ो, यही तुम्हारे लिए काफी है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों पे कोई साल ऐसा न गुजरेगा जिसमें वो कोई बेदत इजाद न करेंगे और किसी सुन्नत को मुर्दा कर चुके होंगे, यहाँ तक कि बिदतें जिंदा और पायदार होती रहेंगी और सुन्नतें मुर्दा होती जाएंगी। ये इमाम तबरानी की किताब अल मुजमुल कबीर के सफ़ा नंबर 319 पे, जिल्द नंबर 10। सच नहीं है, हर चंद साल के बाद एक नई बिदत सामने आती है। और याद रखिए, जहाँ एक बिदत पैदा होती है ना, वहाँ एक सुन्नत मर जाती है। ये एक हदीस है, यानी अलविदतु तमीतु सुन्ना, सुन्नत को मौत आ जाती। क्यों? कि फिर लोगों को ये दीन अच्छा लगता है ना, आसान लगता है ये दीन, इसीलिए तो लोग फिर चाहते हैं कि बस कभी कभी दीन का इजहार कर लो, शॉर्टकट्स के साथ अल्लाह को राजी कर लो। ऐसा नहीं, इसी तरह कुछ और लोगों की बात जो बिदअत के बारे में वो कहते हैं, ताकि हम सब अपने ईमान का इजहार कर सकें कि क्या हमारे अंदर कुछ ऐसी खराबियां तो नहीं आ चुकी कि हम अपनी मर्जी की बात खो बिदअत और हम कहें नहीं ये बिदअत नहीं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हर नई बात गुमराही है, ख्वाह लोग उसे हसनात में शुमार क्यों ना करें। कितनी सच बात है। आज लोग कितनी यानी आसानी से कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, ये नेकी है। लो तुम नेकी से मना करते हो, कुरान पढ़ने से मना करते हो, नहीं कुछ नहीं कहते, लेकिन आप सिर्फ इन अकवाल को सामने रखते हुए अपने हर अमल को परखते जाइए। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और इनको उम्र सानी भी कहा जाता था, शायद आपने इनके बारे में कुछ सुन रखा हो। फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद आपके खुलफा ने सुन्नत पे कायम रहकर बता दिया कि इसकी पाबंदी दर हकीकत कुरान मजीद की तस्दीक, अल्लाह ताला की इताअत और दीने मतीन को तकवीयत पहुंचाना है। जो इस पर अमल पैरा हो वो राहयाब है, यानी हिदायत पर है, और जिसने इससे मदद चाही वो फायजुल मराम है, यानी वो पहुंचेगा अपने मर्तबे पे, कामयाब होगा। और जो इसकी मुखालफत पर कमर बस्ता हो गया, इसने मोमिनीन सालेहीन और कामिलीन से बगावत की राह इख्तियार की, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मुंह की खिलाएगा और जहन्नम रसीद करेगा। यानी अब देखिए कि हमारे आयमाए कराम में और बुजुर्गों में कितनी नफरत थी इस अमल से कि अल्लाह के नबी से सल्लम कुछ ना करें और हम वो कर दें। यानी ऐसे ऐसे मामले उनकी जिंदगी में आते हैं कि वो कोई काम करते ही नहीं थे जब तक अल्लाह के नबी से सल्लम की तरफ से वजाहत ना हो जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस उम्मत के बाद में आने वाले लोगों की इस्लाह और कामयाबी सिर्फ इसी तरीके पर होगी जिस पर चल के करूने उला के मुसलमान कामयाब और राहयाब हुए थे। यानी जिस चीज ने पहले दौर में हिदायत दी थी वही बाद में देगी, और वो क्या थी? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। आज हम कहते हैं कि हम कामयाब होने के कुछ नए मेयार बना सकते हैं, नहीं बनेंगे। जब तक अल्लाह के दीन पे जमे रहेंगे तो हिदायत मिलेगी। और बस लोगों का एक कॉल है कि मखलूक अल्लाह ताला के लिए तमाम रास्ते बंद हैं, सिर्फ एक ही रास्ता है और वो कहे रसूल के नक्शे कदम की पैरवी की जाए। आज उस रसूल के नक्शे कदम पे तो नहीं चलते, हाँ उनके जूते का नक्श बना के उसके नीचे से गुजरते हैं। नक्शे नालईन आपने सुना होगा, यानी आप देखिए कि जब इंसान अमल से कोरा होता है ना तो फिर वो कैसे काम करता है। यानी एक बहुत ही यानी काबिले एतमाद हमारी साथी हैं, तो उन्होंने बताया कि वो किसी घर में गई तो वहाँ बेसमेंट था, तो ये नीचे बेसमेंट में जब गई तो बेसमेंट की जो छत है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा नबी सल्लम के जूते का किशबी बनाई हुई उन लोगों ने, और उसके नीचे आके दुआ मांगते हैं कि हम नबी सल्लम के जूते के साए में खड़े हैं। ये बातें किसको जेब देती हैं? सहाबे कराम ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हमारे दिल में एक चोर है, हम कॉन्शियस हैं, क्योंकि हम वो सुन्नतें नहीं निभा रहे जो के निभानी थी। जो तरीका उनकी जिंदगी का था वो हमारा नहीं रहा। देखिए अगर इसी तरह दीन को अपनी मर्जी से हमने बदलना शुरू कर दिया तो क्या जरूरत थी इस किताब की, और क्या जरूरत थी 23 साल लोगों की मुश्किलात को सहने की, फिर हर एक जो चाहता वो हो जाता। जब तक इसको रोकेंगे नहीं बात नहीं बनेगी। आज देखिए कि आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, बास कंपनी जो फ्रेंचाइज करती हैं, मसलन आप देखिए मैकडोनल्ड्स है या जो भी डिफरेंट आपके सामने चेन्स चलती हैं, फिएस्टा है, चीवी है, आप सारी दुनिया में फिर लें उनका एक ही सेटअप दिखता है, और वो सिर्फ हजारों डॉलर इस चीज के लेते हैं आपके आपकी चीजें सेटअप करने का कि आप टिश्यू पेपर्स भी हमारे ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्वालिटी कायम रहे। अगर कोई के क्या फर्क पड़ता है, चलो चिकन ही है ना, ये नहीं तो वो नहीं तो ये बर्गर ही बनाना है ना, एक बर्गर बाहर रेडी पे बना खड़ा बेच रहा है शख्स, वो 10 रुपए का बिकता है, वही बर्गर आप अंदर मैकडोनल्ड से लेते हैं वो 200 रुपए का लेते हैं, फर्क किस बात का है? क्वालिटी का फर्क है ना। क्या दुनिया में हर चीज में आप क्वालिटी कॉन्शियस हो? अल्लाह के दीन में कोई क्वालिटी ना हो? आप एक बॉक्स खरीदते हैं और उस पर बड़ा मोटा वाला लिखा होता है कि डोंट बाय इफ सील इज ब्रोकन। क्यों? कि सील ब्रोकन होगी, किसी ने अंदर कुछ और डाल दिया, कुछ और निकाल दिया, कोई हर्ज नहीं। आप लेंगे वो चीज? आप कोई चीज खरीदें और आपको शक पड़े कि इसके अंदर वो चीज नहीं है जो बाहर से थी, लेंगे? नहीं ले सकते। तो सारी चीजें तो समझ में आती हैं, तो अल्लाह के दीन के बारे में क्यों नहीं समझ आता? जिसका दिल चाहे वो काम कर दे, जिसका जो मामला हो वो वैसे ही कर दे। नहीं, आपके घर में कोई तब्दीली कर सकता है आके? आए और आपकी कुर्सियां उठा के बाहर रख दे, मेज अंदर रख दे, चीजें इधर से उधर रख दे, फिर के क्या फर्क पड़ता है? मैं अच्छा ही कर रहा हूँ ना, आप इजाजत देते? आपकी ऑफिस टेबल पे कोई आ जाए और आपकी मर्जी आपकी चीजें उठा के अपनी रखना लगे, आपको कैसी लगेंगी? नामुमकिन। आपके सेल फोन के आपके सारे नंबर को डिलीट कर दे और अपने थोड़े डालना शुरू कर दे, आपको कैसा लगेगा? अपने मामले में तो हम इतने पिकी हैं कि हम छोटी से छोटी तब्दीली नहीं बर्दाश्त करते, तो क्या हम अल्लाह के दीन को मश्क बनाए में? आप किसी मुल्क में जाते हैं, उनके कानून लेते हैं कि नहीं लेते? आप क्यों नहीं कहते कि मुझे तो रेड लाइट पे चलना है और ग्रीन पे रुकना है, क्या फर्क पड़ता है, कोई गुनाह की बात है? वो कहेंगे नहीं गुनाह नहीं है, लेकिन फिर आप जेल में जाएंगे, क्योंकि तो ये हमारा कानून है, हमें पता है ये बात है। हर एक की हुकूमत हो, छोटे से छोटा मुल्क दुनिया में देखिए, है उसका कानून ना, लेकिन क्या अल्लाह के दीन जो दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत चीज थी उसका कोई कानून ना हो, उसकी कोई पाबंदी ना हो, जिसका जो दिल चाहे वो कर दे और करने लग जाए? तो लिहाजा बात है असल में अपने मुहासिबे की, हम बचेंगे नहीं इस चीज से। कर भी लेंगे ना ये काम मोहब्बत में, ठीक है, लेकिन अगर जो उससे नतीजा अखज करना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। कल अल्लाह के नबी सल्लम ये नहीं कहेंगे अल्लाह ताला इनको छोड़ दे क्योंकि इन्होंने मेरी मर्जी मेरे पैदाइश की खुशी में किए। और फिर आप देखिए जो मिलाद के नाम पे जो रसूमात होती हैं, कभी एक टेलीविजन में आया हुआ मिलाद मैंने भी देखा था बहुत साल पहले, उस वक्त तो शायद इतनी समझ भी नहीं थी। रबीउल अव्वल का मौका, और आपका तो मीडिया भी माशाल्लाह इस काम में मदद करता है पूरी, आपको तो वही चीजें मिलती हैं देखने को जो अमूमन लोगों को पसंद होते हैं। और खवातीन कौन? शहर की सबसे मशहूर सिंगर्स, बाल कटे हुए खुले हुए पूरी खूबसूरती जाहिर करते हुए, पीछे पिन्नों के साथ छोटे से कोने में दुपट्टे अटकाए हुए, इलायची का दौर चल रहा है, खुशबुएं छिड़की जा रही हैं, और एक एक आके माइक पे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। और वो मोहब्बतें भी कैसी हैं जो सबको मालूम है कि इस तरह के लफ्ज दरूदों में इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो ना अल्लाह के नबी सल्लम को जेब देते हैं ना आपने ये हमें सिखाए। तो जितना अपने आप को बचाएंगे उतना ही इंशाल्लाह ताला बचेंगे। आप देखिए कि एक चीज में शक आ जाता है ना तो उसको छोड़ दिया जाता है, यकीन वाली चीज ले लेते हैं। आपको शक पड़े ना आपकी दूध में मक्खी गिर गई थी, या यहाँ से कॉकरोच गुजरा था, या चींटी गिर गई थी, आप वो दूध की प्याली पकड़ के फेंक देते हैं। आप थोड़ा ले लेते हैं लेकिन खालिस लेते हैं। तो क्या अल्लाह का दीन, अगर आपको यकीन नहीं एक चीज में तो छोड़ दे। कल कह दीजिएगा अल्लाह ताला हमें तो यकीन था ये ठीक है, किसी ने आके शक डाल दिया इस काम में कि ये ठीक नहीं, तो हमने शक की बुनियाद पे छोड़ दिया कि अच्छा जिसने रोका अगर ये काम जायज था रोक दिया, अगर गलत है तो फिर उसको गुनाह हो हमें ना हो। आप क्यों अपने ऊपर बोझ लेते हैं? अपने आप को जितना हम महसूस करेंगे इस चीज के अंदर अल्लाह ताला आपको उतना ही इससे बचा देगा। फिर अमूमन देखिए कि ऐसे काम करते कौन है अमूमन? जाहिल और नादान लोग, तकलीद के मतवाले, जो इस तरह के काम कर करके कहते क्या हमारे बाप दादा करते हैं। आप देखिए जो लोग ये काम करते हैं वो कहते हैं हमारे तो खानदान में ये होता आया। आप देखिए कि इन्ना वजदना आबा अना अला उम्मतिन फ इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून, यानी तकलीद के नाम पे अमूमन ये काम होता है। फिर इसी तरह ये काम वो लोग करते हैं जो नफसानी ख्वाहिशात की तकमील चाहते हैं, और इसी तरह बहुत सारी चीजें जो अपने तौर पे जायज की जाती हैं वो क्यों की जाती हैं? ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी हो जाएं। मैं आखिर में सिर्फ आपके साथ एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूंगी जो मुमकिन नहीं है, ये भी याद रखिए, यानी ये हरगिज मुमकिन नहीं कि दुनिया में से जाने के बाद कोई वापस आ जाए, क्योंकि जो चला गया वह वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया में आ जाएं और हमारे घर के मेहमान बन जाएं, आप सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचिए तो सही, क्या आपके घर का दरवाजा नॉक हो और आप जब दरवाजा खोलें तो आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हों? यकीनन मोहब्बत से बाहें खुलेंगी ना। क्या आप उनको ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنی حیثیت سے زیادہ دینا چاہے گا، بہترین کمرہ، بہترین سامان، لیکن ذرا سوچئے کہ کیا ان کے استقبال کی خوشی ہوگی یا اپنے کپڑوں کے اوپر ایک نظر ڈالنے کی فکر ہوگی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھانے سے پہلے اپنے کمرے کو دیکھیں گے یا ان کو کریں گے؟ کتنی کپ کپاہٹ نہ طاری ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کیا کیا؟ ہم تو آپ کے لیے دل و جان حاضر کرنے کو تیار ہے، لیکن ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے۔ ایک چکر لگوا دیں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف مسلمانوں کی پلیسز کا، ایک آج کے دور میں ہونے والی شادی دکھا دیں، پوری ایک دن کی نہیں، پوری 10-12 دن کی جو شادی ہوتی ہے وہ پوری دکھا دیں، کسی ایک فوتیدگی والے گھر میں لے جائیں کہ جہاں کم از کم 40 دن تو ان کو رکنا ہی پڑے گا، اور اگر وقت ہوا تو 1 سال بھی لگ سکتا ہے، تاکہ پھر برسی کر کے ہی جائیں۔ ایک مسلمانوں کی دکان، کوئی ان کی بزنس پلیس دکھا دیں، کیا سمجھ آتا ہے؟ کیا واقعی پہچان جائیں گے یہ مسلمان ہیں؟ کیا آج کی عورتوں کو دیکھ کے پہچان لیں گے یہ فاطمہ کی بہنیں ہیں، یہ خدیجہ کی بیٹی ہیں؟ کیا آج ہمارے نوجوان بچوں سے ملا دیں ان کو، مان جائیں گے کہ یہ حسن اور حسین کی ہی ساتھی ہیں، یہ اسی دین کے نمائندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو باتیں میں نے کی، اس کے بارے میں ایک فتویٰ موجود ہے عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ کا، جو سعودی عرب کی دارالافتاء کمیٹی کے یعنی مفتی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ اس میں کسی نے سوال کیا تھا ان سے اس بارے میں کہ عید میلاد النبی کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کیا ہے، تو اس کا خلاصہ تو یہی ہے جو میں نے آپ کو رکھا ہے، اسی الحمدللہ اسی موضوع پہ ہی اس میں باتیں ہوں گی، لیکن ریفرنس کے لیے آپ کے پاس ہوگا تاکہ اگر کہیں بھی کوئی بات ہوگی تو کوئی دیکھ لے۔ لیکن مجھے تو یہ پتہ ہے جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ فتویٰ دیکھ کے بھی نہیں مانتا، بات یہی ہے کہ اگر آپ قائل ہوئے ہیں تو ہوئے، مائل ہوئے تو ہوئے، لیکن بات وہی سمجھ آتی ہے انسان کو جو انسان کے اپنے دل میں چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ ہم سب بہترین طریقے سے اسی دین کو ماننے والے بن جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک لے کر آئے، اور ایک سال میں ایک ہی دن یا ایک مہینے میں اظہار محبت ہی کیوں؟ پھر آپ دیکھیں کہ یادگار عمل سے ہوتا ہے، کال سے نہیں ہوتا، عمل کی یادگاریں کھڑی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور چھوٹی سی بات کہوں گی کہ اگر اسلامی سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اتنی اہم ہوتی تو اسلامی سن ہجری کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہوتا، لیکن سب جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر ہجری سے شروع ہوا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ ہر موقع پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات یہی سمجھ آئے گی کہ اصل چیز شریعت ہے، انسان نہیں۔ آپ استاد سے محبت نہیں کرتے، آپ اس پیغام سے محبت کرتے ہیں جو آپ کو اس کے ذریعے سے ملتا ہے، اصل مقصد ہے نا۔ کوئی کسی کی شکل و صورت کو کتنے کو دن برداشت کرے گا، کسی سے لفظی محبت آپ کتنی کو کر سکتے ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔